के दो शब्द भी हमको नीचे लेके आ जाते हैं। तो दूसरों से टकराव से बचना है। दूसरी पॉइंट, हद की बातों से अपने आप को ऊपर लेके जाना है तो स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। हद की कैसी बातें, जैसे कि किसी ने ओम शांति नहीं कहा तो अपसेट है ना, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, उसको गुड मॉर्निंग कहा, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, ये सब हद की छोटी छोटी बातें। अगर हमने किसी को मैसेज किया, उसने हमको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो हम सोचते हैं ये क्या है। तो ये हद की छोटी छोटी बातें हैं। तो हद बेहद में है ना, बाबा ओशन है, और हम अगर हद में अटके रहे तो फिर उस बेहद के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता। और जैसे लास्ट सीजन की मुरली अगर हमने नहीं रिवाइज की है तो उसको रिवाइज कर ले और उसके पॉइंट्स निकाल ले। जैसे 8-7 मुरली चली थी तो 7 मुरली से कम हमारे पास 7 पॉइंट्स हो और उस पॉइंट्स पर हम विशेष काम करना चालू करें एक हफ्ता पहले ही, तो फिर हमारी स्थिति बन जाएगी जब प्रभु मिलन कल होगा तब। तो ये हो सकता है। दूसरा, जो जैसे बाबा जब आते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं कि शिव पर अग के फूल अर्पण करते हैं ना, तो कोई ना कोई कमजोरी हमको बाबा को दे देनी है। तो ऐसी कोई कमजोरी जो लास्ट 6 महीने में हम काम कर रहे हैं जिस पर, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाए, तो हमको बस अभी उसको छोड़ना ही है। तो वो कमजोरी का चिंतन करना चालू करें। अगर अब तक नहीं किया है तो आज का दिन भी है हमारे पास और कल का दिन भी है हमारे पास, तो उस कमजोरी का चिंतन करें कि मुझे ये कमजोरी छोड़नी है, मुझे ये अवगुण छोड़ना है। जैसे कि अगर किसी को अमृत वेला के बाद सोने की आदत है तो बाबा कहते हैं ना ये तो नहीं ठीक है, है ना। किसी को ज्यादा भोजन खाने की आदत है ना, और फिर उसके बाद अमृत वेला नींद आती है। किसी को रोने की आदत है ना, किसी का मूड ऑफ होने की आदत है, किसी का सेंसिटिव नेचर है, कोई भी आदत हो सकती है जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बन रही है। दिनचर्या, हाँ, तो अपने दिनचर्या अनुसार वो देख सकते हैं आप। लेकिन जैसे कि हमेशा डिस्कस किया है या बाबा की मुरलियों में आया है तो विशेष वो टाइम चिंतन का होता है या स्वचिंतन के लिए होता है, तो उसको भी काम में लाना है। लेकिन अगर आप पूरा दिन बिजी रहते हो, अगर आपकी दिनचर्या वैसे है तो फिर शायद आपके लिए अलाउड है फिर तो वो बात है, वो विशेष इस पे बहुत लोग पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट कहा कि अमृत वेला के बाद सोने की आदत, इसलिए वो एक अवगुण जैसे हमारा या कमजोरी है हमारी, कमजोरी।
सोते नहीं अपने, नींद आ जाए तो बैठे बैठे यहाँ नींद आ जाएगी।
वैसे तो अमृत वेला बैठे बैठे भी नींद आ जाती है, कौन चाहता है कि सोए, कौन चाहता है कि किसी की आंख बंद हो जब भगवान की नजर हम पे हो, कुछ चाहता तो कोई भी नहीं है।
नींद करने से तो पहले होता है।
तो कोई ना कोई विशेष कमजोरी पर हम अपना काम करें और पहले तो संकल्प करें कि कौन सी कमजोरी छोड़नी है, दृढ़ता हो कि ये छोड़ना ही है। जैसे उस दिन हैबिट फॉर्मिंग की 7 बातें निकाली थी ना, कि संकल्प करो, दृढ़ता हो उसमें, उसको विजुलाइज करो बार बार कि ये छोड़ना ही है, उसको रेपिटिशन करो कि मुझे ये छोड़ना है, उसको देखो, उसमें पिक्चर भरो उस चीज में कि मुझे ये छोड़ना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो कि ये मुझे करना है तो आज से मैं ये करना चालू करूँ, है ना, आज से मैं रोना बंद करूं। अगर मुझे बहुत रोना आता है किसी के कुछ थोड़े से बोल देने पर, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाऊं।
रोना दूर है, कम रहो।
जैसे किसी को सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहते हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं बोलते कि चलो आज से बंद, वो नहीं बंद कर सकता, वो भी एक एडिक्शन है ना। ये रोना भी है, ये दुख लेने का संस्कार भी है, ये भी एक एडिक्शन है आत्मा में, जो कि अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो शायद नहीं होगा, तो उसको आहिस्ते आहिस्ते करके छोड़ते जाना है। तो उस तरह से काम करना है। फिर किसी विशेष चीज को हमको धारण करना है हमने, कि आज से हम ज्ञान चिंतन रोज करेंगे, आज से हम मुरली के वरदान स्लोगन पर चिंतन जरूर करेंगे। ऐसा कोई विशेष संकल्प अपने लिए ले ले, या कुछ और, कि आज से हम 4 घंटे का योग का चार्ट कैसे भी रखेंगे बाबा, या हम पोता मिल देने में बहुत आलस्य होता है किसी किसी को, तो हम आज से पोता मिल देने के बाद ही सोएंगे, है ना। ऐसी कोई भी विशेष हमारी जो हमको चाहिए हमारे लाइफ में, वो उस पे काम करना चालू करें। फिर जिस दिन बाबा मिलन है, प्रभु मिलन है, जैसे कि कल, तो सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत है अमृत वेला से। तो अमृत वेला किसी को भी मिस नहीं करना है। अमृत वेला फाउंडेशन है, तो अमृत वेला हमारा शक्तिशाली हो तो उसकी तैयारी भी रात से हो। जैसे उस दिन सूरज भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रात को बाबा से दृष्टि लेते लेते सो जाओ, और फिर जब उठो भी तो बाबा से दृष्टि लो सबसे पहले। तो ये तो कितना अच्छा है। कल एक बहन बता रही थी कि वो बहुत टाइम से ये करती है कि सुबह में उठती है तो आँख बंद रखती है और पहले बाबा के चित्र के सामने जाती है और आँख खोलती है और बाबा को देखती है। अगर कोई दरवाजा खटखटाया भी तो वो बिल्कुल आँख नहीं खोलती, पहले बाबा को देखती है वो।
जिसमें कोई आ गया, खड़ा हो गया, दुर्घटना हो गया
तो इसीलिए तो आँख बंद, अभी कमरा तो छोटा सा ही है। तो वो पहले बाबा को, उसने अपने साइड में भी बाबा को रखा है, सामने भी बाबा को रखा है। तो कैसे कहते हैं ना कि अगर दिन में कोई किसी का चेहरा देख ले तो आज इसका चेहरा देख लिया, आज दिन कैसा जाएगा पता नहीं। तो अगर भगवान को देख लिया, भगवान को याद कर लिया तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। दूसरा एक काम कर सकते हैं, जैसे कि बाबा की जो ड्रिल्स है, बाबा की जो आवाज में है, सबसे पहले उठते साथ उसको बजाए तो सबसे पहले हमारे कानों में भगवान की आवाज जाएगी, वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा बहुत सारे विघ्न आएंगे जब हम तैयारी करेंगे, तो जैसे उस दिन संडे की मूल्य में बाबा ने कहा था कि विघ्न के लिए सहन शक्ति का कवच पहनो, तो कल सब लोग मॉर्निंग में उठ के सहन शक्ति का कवच पहन लेना, क्योंकि जब इतनी तैयारी हम करेंगे हाँ तो आने वाले विघ्न, तो सहन शक्ति का कवच अर्ली मॉर्निंग कल पहनना है। और सबसे पहले लक्ष्य रखना है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्थिति को डाउन नहीं करूंगी, है ना। और बहुत शेष संकल्प करना है कि आज मेरा मिलन भगवान से होने वाला है, मैं कितनी भाग्यवान आत्माओं में कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि जिसको मैंने इतने टाइम से ढूंढा वो मुझे मिल गया, है ना। और 6 महीने के बाद हम बाबा को देखेंगे, तो उस चीज को बार बार याद करना सुबह उठते साथ। और जैसे कि हमेशा कहते हैं कि अमृत वेला फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा कल तो पूरा दिन हमारा अच्छा रहेगा। बाबा ने कभी कहा है कि अमृत वेला पटरी पर डाल दो गाड़ी को तो दिन भर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जो गृहस्थी है उनके लिए बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते अगर अमृत वेला अच्छा है तो दिन भर सहज ही मदद मिलती रहेगी आपको, है ना। तो जैसे कि भाई जी ने कहा ना डोज दे दो अपने आप को, तो जैसे कि अमृत वेला जो है वो बोलस डोज है, इंजेक्शन है वो, तो वो दिन भर हमारी गाड़ी धक्के से भी चलेगी तो चलेगी, क्योंकि अमृत वेला अच्छा था हमारा। तो जैसे कि अमृत वेला के लिए बाबा ने ये भी कहा है कि अगर रात को जाग के आप अपनी नींद को गवा कर भी अमृत वेला करोगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, ऐसे नहीं कि आप बीमार हो जाओगे। तो आज ही हम देख रहे थे कि कितने सारे लोग हैं पांडव भवन में, मधुबन में, है ना। तो कल थोड़ा सा करके जल्दी उठने की कोशिश करना, जो टाइम पर हम उठते हैं शायद हम उससे थोड़ा जल्दी उठे तो और अच्छा, तो और अच्छा एकांत का अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे पहले अमृत वेला। अब अमृत वेला के बाद भी हमारे पास समय होता है, जो ये क्लास में आते हैं वो तो ये क्लास में आ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो टाइम को भी सफल कर दिया तो बहुत अच्छा। तो वो टाइम पर हम ये कर सकते हैं, हम बाबा को पत्र लिख सकते हैं। आज हम बाबा के कमरे में गए तो हमने देखा छोटे छोटे कार्ड्स रखे हुए थे वहां पर, है ना, तो किसी ने बना के रखे, तो हमने सोचा देखो ये आत्मा जब ये बना भी रही होगी तो इसकी बुद्धि कितनी एकाग्र हो गई होगी, है ना, और वो सिर्फ बाबा के बारे में ही सोच रही होगी जब ये बना रही होगी तब भी। तो बुद्धि की एकाग्रता, जो भी कुछ कर रहे हैं हम वो बुद्धि की एकाग्रता के लिए करने वाले। तो पत्र लिखे बाबा को प्यारा सा, कि या चार्ट दे सकते हैं हम उस पत्र में कि 6 महीने में हम कैसे थे, हम कितने ऊपर कितने नीचे गए, हमारी ज्ञान में कितनी पॉइंट्स, योग में कितनी पॉइंट्स, धारणा में, सेवा में। बाबा को पास तो रिजल्ट होती है हमारी, लेकिन हम खुद भी अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं। तो बाबा को एक पत्र लिख सकते हैं उसके बाद। फिर आती है मुरली, मुरली क्लास। इसके पहले भी आपके पास टाइम होगा तो वॉकिंग करके एकांत में भी जाके कुछ चिंतन कर सकते हैं। फिर मुरली, जैसे कि कल मधुबन में है हम तो अव्यक्त मुरली चलेगी बाबा की, है ना। तो जैसे कल की मुरली है बाप समान बनने की विधि, आज्ञाकारी बच्चे, तो उसमें से कोई कोई पॉइंट्स निकाल ले, आज्ञाकारी बच्चे मतलब क्या, है ना। फिर बाबा ने कुमारों से बात की है तो तन मन धन कैसे सफल करना है उस पर बात की है बाबा ने। फिर ओडिशा में कोई साइक्लोन आया है वहां पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई है तो उधर लोगों ने उस प्राकृतिक आपदा में हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये सब चीजों की विशेष टॉपिक है कल की मुरली पर। तो इस मुरली से हम टॉपिक्स निकाल लें क्योंकि दिन भर हमको इस पे चिंतन करना है। तो मुरली हमारा विशेष भोजन होगा कल के लिए, तो मुरली, उसके बाद मौन, एकांत, अंतर्मुखता। कितनी बार तो मौन कितने भाई बहन 3 दिन पहले ही रखना चालू करते, लेकिन विशेष उस दिन मौन रखना है। और मौन रखने के बाद ऐसे नहीं कि मुख का मौन रख के हाथ पैर खींचते हुए बात करनी है। बहुत बार ऐसे होता है मिट्टी में जाते हैं हम, देखते हैं मौन है सब लोग, तो एक्शन में इतने बात करते हैं कि वो संकल्प इतने चलते हैं। तो संकल्पों का मौन है, मन का मौन होना चाहिए हमारा। हम जो जरूरत की चीज है बस वही बात करें, है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा बात करने की मतलब कि आज देखो कितनी ठंडी है, आज टेम्परेचर देखो 18 से 17 हो गया, है ना, ये सब बात करनी।
हाँ ठीक चल रहा है टेम्परेचर,
ठीक चल रहा है। तो ये सब बात करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, मौन है ना। और एकांत, अंतर्मुखता, तो हम अपने लिए कुछ टाइम दे, जैसे मधुबन में है तो नक्की के पास जा सकते हैं, और कल तो संडे है तो बहुत अच्छा है। तो जिसकी छुट्टी है या जो बाहर से आए हैं, तो जिनका कर्म है, कर्म में जाना है, वो भले उसमें भी मौन रख सकते, जितनी आवश्यकता है उतना ही बात करे। वो जो हंसी मजाक और वो जो रमणीकता है उसको थोड़ा बाजू में रख देना कल, और रहना बस मौन की स्थिति में रहना, तो उतना अनुभव होगा। जैसे सूरज भाई जी ने होमवर्क दिया था ना 6 दिन का, कि हर एक दिन समान दिए थे उन्होंने कि 1 घंटे में 5 बार उसका अभ्यास करो। उन्होंने क्यों दिया वो होमवर्क, ताकि हमारा मन एकाग्र हो। जिसका मन एकाग्र होगा ना वो शक्तिशाली मन होगा, तो इसीलिए वो होमवर्क दिया गया था। तो मन, मौन, एकांत और अंतर्मुखता। अंतर्मुखता यानी कि अंतर्मुखी, अंदर देखना, स्व को देखने का काम करना कल, दूसरों को देखने का काम नहीं करना, तो अंतर्मुखता। चौथा पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट से कल मौन, है ना, ये तो सबसे बड़ी माया है। तो जैसे कि है ना, जैसे 4:45 बजते हैं सबके मैसेज आना चालू होते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो कल आना चालू करेंगे वेलकम बाबा, लव यू बाबा, लेकिन ये सब चीजें भी बंद। तो ये नहीं, क्लास भेज सकते हैं, लेकिन क्लास भेज सकते हैं, लेकिन वो जो पिक्चर्स भेजते हैं, और जैसे 250 आत्माएं हैं वो ग्रुप में, और आप एक है ना पोस्ट करते हो तो 250 लोग उस मैसेज को देखते हैं और अपने मौन को भंग करते हैं आप दूसरों के। तो आप कितना बड़ा कर्म कर रहे हो, कितना बड़ा कर्म बना रहे हो आप, कि आप सबको डिस्टर्ब करते हो। क्यों डिस्टर्ब करते हो आप? हम तो कितनी बार सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप में ये पोस्ट कर चुके हैं कि नहीं करना है नहीं करना है, फिर भी करते हैं लोग। और जो आत्माएं कल करेगी ना वो साधारण पुरुषार्थी है, हम अभी बोल रहे हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी है उसका एक भी पोस्ट नहीं आएगा कल ग्रुप में। नहीं है ही, क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हो सबको। क्यों, आपको क्या है ना जरूरत पड़ी है कि ये कोई कोई मैसेज भेजते हो ग्रुप में सबको डिस्टर्ब करने के लिए, जबकि सुशील भाई हर 3-4 दिन में एक मैसेज पोस्ट करते कि कुछ नहीं भेजो कुछ नहीं भेजो, है ना।
तो बहुत कम आता है,
तो भी है ना, लेकिन पहले बहुत आता था, अभी इतना वार्निंग्स देने के बाद वो कम हो चुका है, नहीं तो पहले बहुत आता था। तो वो चीज हम ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप से भी मौन रखनी, क्योंकि लोगों की आदत होती है अमृत वेला की तुरंत बात, हैप्पी अमृत वेला ये सब चालू होता है, तो ये सब नहीं करना है, है ना। कल की मुरली में एक पॉइंट है कि मधुबन में माया आती है, आप यहाँ पे आए हो तो बाबा कहते हैं कि जग चलता है। तो रात में क्लास में हम चर्चा कर रहे थे इस बात की, तो एक भाई ने कहा मधुबन में माया आती नहीं रहती है साथ में, तो हमने कहा कैसे, तो बोले व्हाट्सएप से। तो इस प्रकार कैसे है ना, माया कभी भी एंटर कर सकती है ना कैसे भी, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फिर है प्रभु मिलन की क्लासेस, जो सूरज भाई जी की प्रभु मिलन की क्लासेस है वो हम सुन सकते हैं, है ना। उस क्लासेस में बहुत सारे जैसे ड्रिल्स कराए हैं भाई जी ने, तो वो हमारे बुद्धि और मन को एकाग्र कर देते हैं। तो जैसे कि उस आत्मा को वरदान है, उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो इतनी 20-25 हजार आत्माओं को चार्ज कर देते, तो वो क्लासेस बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए कल सुबह से लेकर शाम तक अगर हम उसमें से 1-2 क्लासेस या 2-3 क्लासेस भी सुन ले, तो हमारी स्थिति शाम तक बहुत अच्छी हो जाती है। हमको याद है जब हम पहले बाबा से मिले थे, तो हमने तो वो एलसीडी पे देखा था, तो हमने मॉर्निंग से लेके शाम तक 5-6 क्लासेस सुनी थी प्रभु मिलन की, और तब हमको पता चला ना कि मतलब भगवान क्या है और कैसे आएगा और हमको क्या करना है, जब दृष्टि देगा तो हमको क्या करना है, जब बाबा बोलेगा तो हमको क्या करना है, जब बाबा को भोग खिलाया जाता है तो क्या करना है, सब कुछ सूरज भाई जी ने क्लियर किया है वो क्लासेस में, तो वो क्लासेस हम जरूर सुने। दूसरा, हम कोई लौकिकता में ना जाए कल, है ना, कोई भी लौकिक वातावरण से दूर रहे। यहाँ हम है तो यहाँ पे तो बहुत अलौकिक वातावरण है, परंतु हम जब बाहर रहते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि अलौकिक वातावरण में अलौकिकता में जाने के चांसेस होते हैं, जैसे घर गृहस्थ में रहते, तो मतलब अपने आप को काम रखे, कुछ हो भी रहा है तो उससे इतना प्रभावित ना हो। जैसे कल हम यहाँ चल रहे थे नक्की पर, तो चार भाई एक कुत्ते का फोटो निकाल रहे थे और पूछ रहे थे कुत्ता कितने का खरीदा, ये कितने, मतलब कैसे हमारा कैसे माइंड कहाँ पर भी जा सकता है, बहुत चांसेस होते हैं इतने अलौकिक वातावरण में रहने के बाद भी, तो ये सब चीजों पर ध्यान दे रहा है और लौकिकता से दूर रहना है। जैसे हम कल सोच रहे थे शांतिवन में जो भाई बहने रहते हैं, तो गेट नंबर 6-4 के बाहर जो इतनी सारी दुकानें लगी हुई है ना, तो उसमें भी जाकर अगर हम शॉपिंग में हमारा टाइम वेस्ट करें कल, तो फिर कैसा होगा। तो ये सारी चीजें बाद के लिए रख देना, है ना, कल नहीं करना वो सब चीजें, तो ये भी लौकिकता ही होगी। जैसे कि फिर है कि साकार की जो दादियों के अनुभव है वो हम सुन सकते हैं, जैसे डॉक्टर लोहार के साइड पे दादी जी के अनुभव दिए गए, वो क्यों सुनने हैं, किससे नशा चढ़ता है वो सुनने के बाद, वो उसमें कैसा है, दादी बड़ी दादी जी बैठे हैं, सारी दादियां बैठी है उसमें, और दादी बोलते हैं और कुछ दादी मिस करते हैं तो दादी को पॉइंट करके दूसरी दादियां बोलती है, तो वो सुनने ही इतना मजा आता है और सारी यादें रिफ्रेश हो जाती है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था यज्ञ में, तो वो हम सुन सकते हैं, तो वो साइड पे दिए हुए हैं तो वो सुन सकते हैं। दूसरा, साकार बाबा के जो अनुभव है वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्पार्क में वो बुक है साकार यादें, तो वो पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, उसमें भी बाबा के बारे में हम पढ़ेंगे तो और मजा आता है वो पढ़ने के लिए। जैसे हमारे क्लास में, जैसे रात्रि क्लास में कभी कभार प्रभाकर भाई आ जाते हैं, उनके पास तो भंडार है साकार अनुभव का, तो जैसे कल वो आ गए तो ऐसे परसों था तो कुछ चिंतन चल रहा था कि कैसे आत्माभिमानी स्थिति में दादियां स्थित रहती है हमेशा, तो उन्होंने एक कितना पुराना अनुभव सुना दिया जो कई बुक में भी नहीं लिखा था, कहा कि हृदय पुष्पा दादी एक बार गरम तेल था और है ना पकौड़े बना रहे थे दादी, और एक बहन आई और कढ़ाई उल्टी हो गई और दादी के हाथ पे गिर गई वो तेल, दादी ने बस ऐसे किया और वॉश किया, जैसे कि ठंडा पानी गिरा होगा ना हाथ पे, कोई रिएक्शन नहीं, बस हाथ धोया और पकोड़े बनाने वापस लग गई। और ये चीज कोई रोजी वैन तमिलनाडु की देख रही थी और वो कैसे उस चीज से प्रभावित होकर ज्ञान में चलने लगी, तो ये सारी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए साकार अनुभव भी हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। दूसरा एक काम कर सकते हैं, हिस्ट्री हॉल में जा सकते हैं, हिस्ट्री हॉल में जो इतने चित्र लगे हुए बाबा है ना, हिस्ट्री के चित्र है जो हमारे सब, उन चित्रों को देख के उस यादों को वापस ला सकते हैं कि ये चित्र कब निकाला गया, ये क्लिफ्टन का है, ये मम्मा बाबा खड़े, ये विश्व किशोर दादा खड़े, तो ये कब निकाला गया है, किसी को समझाते हैं हम तभी भी अगर ये सब समझाए तो लोग कितना प्रभावित होते हैं, तो वो चीज कर सकते हैं। दूसरा, जो बाहर रहते हैं तो वो अगर हॉलीडे ले सके, अभी जैसे कल तो संडे है लेकिन कभी कभी प्रभु मिलन वीक डेज पे भी आता है, तो जो हॉलीडे ले सकते हैं या हाफ डे ले सकते हैं तो वो कर सकते हैं, और जितना हो सके जो बाहर रहते हैं वो सेंटर पे जाके अपना टाइम बिताए, सेंटर पे जाके योग करे, और कई सेंटर पे तो योग भट्टी होती है, और शाम को भी जैसे कि हम एक घंटा पहले ही पहुंच जाए तो उस सिटी में चार्ज हो सकते हैं। दूसरा, हम अपने फर्स्ट मिलन को याद करने की कोशिश करें कि हमारा फर्स्ट मिलन जब बाबा से था तो हमने क्या किया था, है ना, तो वो जब हम याद करते हैं ना तो बहुत खुशी होती, कैसा नशा था वो जब हम फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने आए थे, तो वो भी चीज हमें नशा लाएगी, क्योंकि हमको पूरा दिन भर हम अपने आप को नशे में लाना है अपने आप को, तो कैसे लाना है। और दूसरा, हमने सोचा कि जो बाबा को हम देखते हैं ना, जब बाबा की अलग अलग लीलाएं होती है स्टेज पर, और बाबा कभी हाथ ऊपर कर देता है वरदानी, और फिर वो याद करे, बार बार याद करे, बाबा जब दृष्टि देता है तो कैसे स्माइल करता है बाबा, है ना। बाबा जब लड्डू ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे दिखाता है, वो सारी चीजों को बार बार अपने सामने लाए, वो सब सामने लाने के बाद भी स्थिति अच्छी होने लगती है और बहुत खुशी होता है कि ये तो इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो वो कर सकते हम। और जैसे कि ये दिन भर तैयारी, और कोई पॉइंट याद करना,
उपकार उसके हमारे पर कितने हुए हैं।
हाँ, बाबा के उपकारों को याद करें, बाबा को धन्यवाद करें बार बार कि उसने हमको इतनी अच्छी जगह दी, हमको जो मिलन के लिए यहाँ पे आए हैं एटलीस्ट हम पहुँच गए, कितने हैं जो नहीं आ पाए। तो ये सारे बुद्धि में ये सारा चिंतन पूरा दिन अपनी प्राप्तियों को याद करे, है ना, कितनी खुश नसीब आत्माओं की उसने बुला लिया। ये दिन वापस नहीं आने वाले, एक बार अपने आप को ये भी याद दिला दे कि ये दिन वापस नहीं आने वाले। अभी ऐसा भी टाइम आएगा जब बाबा चला जाएगा, थोड़ा इमोशनली अपने आप को, तो हाँ, तो जब अब हम नीचे पहुंचेंगे डायमंड हॉल में, तो डायमंड हॉल में बैठ के क्या करना है, ये थर्ड पार्ट। तो सूरज भाई जी की क्लास चलेगी, जो पहुंच सकते हैं भाई जी की क्लास जरूर सुने, और उस क्लास के बाद हमारे पास एक घंटा डेढ़ घंटा लगभग होता है, वो चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, वो टाइम को, वो टाइम पर बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो किसी को सीट नहीं मिलती है तो व्यर्थ चिंतन उस पर चलता है ना। तो जहाँ पर भी मिले बैठ जाना है, अंदर मिले अंदर बैठना है, बाहर मिले बाहर बैठना है, क्योंकि मिलन उसी आत्मा का होता है जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है, उस आत्मा का नहीं होता जो फ्रंट के सोफे पे बैठी है या स्टेज पर चढ़ेगी, उस आत्मा का मिलन नहीं होता भगवान से, मिलन उसका होता है जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है, जिसका मन साफ है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि वो माता जो बैल्कनी में एकदम एंड में बैठी होती है ना, उसको भी वो मिलन का अनुभव होता है, जबकि उसको बाबा दिख रहा भी नहीं होता है, उसको वो टीवी भी कितनी दूर होता है, उसमें भी इतना छोटा सा होता है, लेकिन वो कितने खुश होते हैं वो माता है। कभी देखा है वो पीछे की तरफ जाके, या तो देखो हमको तो कभी अंदर सीट मिलती है, वो जो विंडो के बाहर बैठे होते हैं वो कैसे मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं उस चीज का। तो उनको याद करें अगर हमको कल सीट नहीं मिलेगी तो, और लेकिन निराश नहीं हो कि सीट नहीं मिली, अरे भगवान के यज्ञ में आके इतनी सेवा भी की हमने इतने महीने से और सीट नहीं दी बाबा ने, ये सारे व्यर्थ चिंतन नहीं लाना है कल। तो और उस एक घंटे को सफल करने के लिए हम योग करें, योग कर सकते, किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट पे देखे बाबा को देखे और योग करे वो एक घंटा, इतने अच्छे गीत बजते। तभी नहीं कर सकते तो वापस प्रभु मिलन के क्लासेस है वो सुन सकते हैं, क्लासेस वहाँ बैठे बैठे, है ना। और फिर बाबा जब आएंगे, दादी जब स्टेज पर आएंगे और जब गीत बजता है तो बाबा का आह्वान करना है, वैसे तो सुबह से ही बाबा का आह्वान बार बार करना है ना, निमंत्रण देना है उसको बार बार, तो वहां बैठ के भी बाबा का आह्वान करना है प्यार से। और जैसे एक ड्रिल और बताई थी भाई जी ने कि बार बार ऐसे देखो, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ गए और दोनों बाप दादा आके मेरे सामने खड़े हो गए। और अगर आप ये दिन भर में बार बार करेंगे, जिस स्थान पर आप काम करते हो या जिस घर में आप रहते हो, तो सोचो उस घर का वातावरण कितना शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये भी दिन भर कर सकते हैं। और जब वहाँ पे गीत बजता है तो बाबा का आह्वान करना है, और जैसे ही बाबा आ जाते हैं और फिर हमको दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि जब देंगे तब वो हमने जो कमजोरी सोची थी ना कि ये हम छोड़ देंगे, तो वो कमजोरी हमको बाबा को दे देनी है उस वक्त कि बाबा ये आप ले लो, बाबा को वो कमजोरी दे देनी है और बाबा से वरदान लेना है, जिस चीज को हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं वो हम बाबा से धारण कर ले कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे भाई सूरज भाई जी ने लास्ट वीक बोला कि अभी भगवान सिर्फ दृष्टि देने के लिए आएगा, 20 मिनट दृष्टि देगा, तो 20 मिनट जब दृष्टि देगा तो क्या करना है 20 मिनट। तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर बाबा इतनी देर तक दृष्टि दे रहा है तो दृष्टि लो उसकी, है ना, प्यार से उसकी दृष्टि लेना है, तो कमजोरी दे देना है और लेना है। और दूसरा, जब बाबा की मुरली चलेगी तो जैसे कि एक संकल्प करना है कि इस पूरे डायमंड हॉल में मैं अकेली बैठी हूँ, है ना, और बाबा है और बाबा सिर्फ मुझसे मिलने आने वाला है आज, इतना अपने आप को चार्ज करना है कि बाबा मुझसे मिलने आ रहा है। मैं पूरे डायमंड, जैसे उस दिन कहा ना कि मधुबन में घूमते घूमते ये सोचो कि मैं अकेली मधुबन में घूम रही हूँ, तो डायमंड हॉल में भी ऐसे सोचो कि मैं अकेली डायमंड हॉल में बैठी हूँ और बाबा बस सामने बैठा है। फिर बाबा की मुरली चलेगी, उस वक्त भी बीच बीच में बाबा से शक्तियां लेना है, शक्तियां लेना है। जैसे बाबा की मुरली बहुत स्लो स्लो चलती है, तो बाबा से शक्तियां लेते जाओ। और फिर उसके बाद दादियां स्टेज पर जाते हैं और भगवान को भोग खिलाया जाता है। बहुत लोगों की आदत होती है जैसे ही मुरली चालू होती है फिर नीचे और डायरी पेन से नोट्स लिखना चालू, नेक्स्ट डे सबको मुरली मिल जाती है। इसीलिए फिर मुरली के पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, मुरली के पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, पूरी मुरली लिखने की जरूरत नहीं है। इन आंखों को देखने दो भगवान को, क्योंकि इतना तरसी है ये आंखें, तो उसको देखने दो कि क्या है भगवान, वो किससे बात कर रहा है, वो कैसे स्माइल कर रहा है, कभी हाथ ऐसे ऐसे करता है, क्या क्या करता है वो बाबा, उस चीज को अपने आईज में कैप्चर कर लेना है कैसे वो करता है। और फिर उसको बाद में 15 दिन के लिए नेक्स्ट याद करना है हमको, तो अगर हम डायरी में लिखते गए तो वो नहीं होगा। तो जब बाबा को भोग भी खिलाया जाता है ना, तभी भी बाबा को देखना है कि कैसे वो भोग स्वीकार करता है, कैसे उसका हाथ यहाँ आ जाता है, किसी और को देना होता है उसको, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है बाबा की, और बड़ा मजा आता है वो सब देखने के लिए। तो बाबा कैसे, और उसमें कोई डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। कोई भाई किसी का अनुभव था कि वो भाई बड़े अच्छे से आके मुरली सुना, उसकी स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में भगवान ने जब टोली फेंकी तो उसको लगा भगवान टोली फेंकता है, ऐसा हो गया और उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई। लेकिन अरे जिसके हाथ में वो टोली गई उसका सोचो, उसका तो पूरा जीवन ही वो याद रखने वाला है उस चीज को। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और कुछ? हाँ, आने के बाद अच्छा अनुभव भी लिख सकते पूरे दिन का कि कैसा गया हमारा प्रभु मिलन। और जैसे कि कल एक बहन हमारे पास आई, अभी और भी व्यर्थ चलना चालू होता, तो कह रही थी कि दादी तो अहमदाबाद में है, तो कल बाबा मिलन नहीं है क्या? तो मैंने कहा कि आप पहले 12 दिन पहले भी आपने आके यही बोला था, और अभी तो हम प्रभु मिलन का क्लास तैयार कर रहे और है ना, मैंने आपको तभी भी बोला था कि ये संकल्प नहीं करो क्योंकि 12 दिन बाकी है, और अभी 2 दिन पहले भी आप ऐसे ही आके बोल रहे हो कि कुछ भी हो सकता है ना, और बाबा आए ना आए, लेकिन हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखें। मिलन तो हमारा रोज ही होता है बाबा से अमृत वेला, या पूरे दिन भर भी होता है, और इतना जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली होगा। इसीलिए ये संकल्प ही नहीं करना है। देखो हम भगवान को खींच के बॉम्बे तक लेके आ गए ना, तो फिर बाबा जब बॉम्बे में, दादी बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में भी भगवान आ गया। और उस चीज को जैसे आशीष भाई ने कहा था ना कि है ना, एक बार दादी बाबा नहीं आए, फिर दादी को लेके गए अंदर, फिर बाबा आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजों का सोचने का काम हमारा नहीं है कल के लिए। तो हम नशे में रहे और हमारा ये प्रभु मिलन बहुत यादगार हो, सुंदर हो। जैसे कल की मुरली का एक पॉइंट था, ये कल्प कल्प की बाजी है ना। और अगर पिछाड़ी में हमको ये पश्चाताप ना हो कि हमने पुरुषार्थ का समय था और पुरुषार्थ नहीं किया, तो कल्प कल्प की बाजी है ये, भगवान से हमारा मिलन है। और हमारी शुभ भावना है कि सबका मिलन सुंदर और यादगार होगा। ओम शांति।
कोई प्रश्न प्रभु मिलन के? कोई प्रश्न
मतलब तो बता दिया,
किसी को प्रश्न
को पूछना? पीछे वाले
जो नए आए
पहला
दिन है और आज से अभी चालू है।
जब पांडव मेरे साथ,
जब पांडव
इतने में सुनते नाम बता दो तुमको
मालूम
है ना।
ओम शांति। शरीर का नाम श्रद्धा बहन है, यहाँ मधुबन में सेवाएं देते हैं। तो अभी हम सभी ने सुना कि प्रभु मिलन कैसे करना है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनी। फिर भी अपने लिए कोई एक और विशेष बात का पुरुषार्थ हम सभी को करना है। और मुझे हमेशा एक बात याद रहती है कि जब बाबा आता है, कई बार काफी वहां पे ऊपर नीचे हो जाता है, कई लोग डिस्टर्ब होते हैं, रिपीटेशन में पॉइंट्स चलती है, तो सोचते हैं कि दादी बोल गए क्या कि बाबा है या नहीं, तो ये जो संशय आता है तो उस समय हमें संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्रामा अनुसार जिस समय जो पार्ट चलना है वही चलता है, और बाबा को जो कार्य कराना है चाहे दादी की तबीयत ठीक हो नहीं हो, बाबा वो करा के ही रहता है। अगर उसे अपने अपने बच्चों से मिलना है तो वो मिल के ही रहता है। लेकिन कई बार होता है कि अभी आजकल जो अव्यक्त मिलन शुरू हुआ है तो हम देखते हैं कि दादी ट्रांस में जाते हैं तो झटका नहीं आता है, तो कई बार उसी बात में रहते हैं कि बाबा आया ही नहीं है, शायद दादी ने ही बात किया। तो बार बार हमें समझाया गया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे तभी भी बाबा में जब शिव बाबा की पधरावड़ी होती थी वो नेचुरल होती थी, तो उसमें कुछ भी ये नहीं होता था कि आए या नहीं, वो समझने की बात होती थी, तो भी बाबा के टाइम काफी अच्छे से समझ में आता था। लेकिन अभी ये हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड है कि हम बाबा को कितना समझ सकते हैं। नई स्थिति होगी तो हम नहीं समझेंगे, उसी उलझन में रहेंगे आए या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लास्ट में देखेंगे रिजल्ट होगा कि हम 0-0 जैसे गए थे जैसे बैठे थे वैसे ही वापस जाएंगे उसी उलझन में। जब तक दूसरे दिन सब लोग क्लियर ना करें तब तक हम ऐसे ही चिंतन चलता रहेगा। या तो कई बार ऐसे भी हमने सुना है लास्ट टाइम जो कुछ भी हमने देखा, तो दूसरे दिन जब क्लियर भी करते हैं मुरली के टाइम कि नहीं बाबा आया था ऐसे ऐसे हुआ, तो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे सब समझाने के लिए हमें आठर देने के लिए बोला है, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये सब संशय हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए, तो ही हम बाबा मिलन का सुख ले पाएंगे। ओम शांति।
दूसरी इसकी विशेषता है इसका आवाज बहुत मीठा है और गीत
गाते हैं। ओम शांति। आज रात में यहाँ पर जो कल की अव्यक्त वाणी है उस पर डिस्कशन होगा 8:30 से रात को 10 बजे तक। उस पर कुछ प्रश्न निकाले हैं जो सूरज भाई ग्रुप में भेज, सुशील भाई ग्रुप में भेज देंगे। तो ऐसे 16 प्रश्न हैं, तो कल की 16 तारीख है। जैसे डॉक्टर हीनाबेन कह रहे थे कि 16 तारीख 16 कलश संपूर्ण और 16 श्रृंगार करके साजन से मिलना है। तो ऐसे ये 16 प्रश्न है, तो वो प्रश्न अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। मुरली जिन्होंने पढ़ी है वो उनका ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो केवल प्रश्नों के ऊपर चिंतन करें सारे दिन भर थोड़े थोड़े। तो फिर रात में 15 नवंबर 1999, तो जो आज्ञाकारी की जो मुरली है तो रात में यहीं पर आज क्लास होगी। और कल सुबह तो बहुत सारा बता दिया पॉइंट सारी, कल सुबह हम फिर से इसी क्लास में उसके बारे में और थोड़ा चिंतन करेंगे कि प्रभु मिलन कैसा हो। कल शाम को हम बाबा से मिलेंगे, परसों सुबह जो मुरली कल रात को चलेगी बाबा की उसी के ऊपर उसका रिवीजन क्लास यहाँ होगा, और फिर आगे का तो बता दिया है ऑलरेडी आपका एक वो चार लोगों की नहीं 3 लोगों की कमेंट, क्योंकि मंडे को तो रिवीजन होगी अव्यक्त मुरली की, तो 3 कमेंट्रीज के लिए 3 लोग। तो सबसे पहले ट्यूसडे को चंद्रशेखर भाई जी भक्तों को सकाश, ट्यूसडे है ना इतनी,
हाँ
भक्तों को सकाश ट्यूसडे। वेनसडे कौन जिसने नहीं किया है बहुत दिनों से, अरे हाँ श्रद्धा बहन नहीं वो जाने वाले थे, हाँ वही तो रहेंगे, इनको थोड़ा बाद में देते हैं, इनको अव्यक्त वाणी देनी है सैटरडे को, अव्यक्त वाणी 71 की नेक्स्ट तारीख सुशील भाई बताएंगे। फ्राइडे को, सैटरडे को सुशील भाई को एक टॉपिक दिया गया है, टॉपिक का नाम है अंधेरी रात घना जंगल सहारा कौन, तो इस टॉपिक पर कल की मुरली के आधार से सुशील भाई बात करेंगे, वो अव्यक्त शाम को चलेगी वो वाले उसके बाद ट्यूसडे वेनसडे को अरविंद भाई सन्यासी जो है विश्व भर में, केवल भारत के नहीं संसार भर के जो भी सन्यासी हैं उनका आह्वान उनको सकाश। और वेनसडे थर्सडे को डॉक्टर हीना धर्म स्थापक केवल धर्म स्थापक और उनके धर्म की सारी आत्माएं बुद्ध बौद्ध धर्म, गुरु नानक सिख धर्म, ऐसे सारे धर्म स्थापक की लंबी लिस्ट और उनके धर्म की जो आत्मा है उनको सकाश। ये थर्सडे को, तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका है, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे 71 की मुरली आपको एक रिवाइज करानी है। कौन सी मुरली, वो डेट सुशील भाई देंगे सैटरडे को, ये संडे का आगे बताएंगे। ओम शांति।